सेम थिंग्स इंडिया ने भी चाइना के बारे में कही हैं. उन्होंने कहा है कि चाइनीज ट्रूप्स कैरिड आउट प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स टू चेंज द स्टेटस को ऑफ लद्दाख. तो ये हम जो है वो नहीं करेंगे. और आपको पता ही है कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं तकरीबन जून से आमने सामने एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं. तो अब सर्दी आ रही है, अब सर्दी में इंडिया का कंसर्न
बढ़ता चला जा रहा है. आई थिंक वो चाइनीज जो हैं वो एक गेम खेल रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि ये जो है सर्दी का मौसम जितनी जल्दी आ सके आए. और वो तो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड एंड दे
हैव इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर देयर.
एग्जैक्टली. और यहाँ पर इनके पास जो इंडियन साइड है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो दे कैन नॉट टेक कोल्ड. तो ये एक चीज जो है ना वो चाइनीज वो गेम प्ले कर रहे हैं कि भाई किसी तरह इसी तरह चलते रहो सर्दी तक, फिर सर्दी में देखेंगे क्या होता है.
क्या होता है. हाँ जी, हाँ जी. तो ये आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था कि हिटलर को मना किया गया था कि रशिया में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और उस सर्दी जो है उस सर्दी को आप जर्मन फौजी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. तो हिटलर साहब ने कहा नहीं, मुझे भेजना ही भेजना अपनी फोर्सेज को. सारी फिर उधर इतनी ट्रेन मिलिट्री सब मर गई और फिर इतना लूज कर गया जर्मनी. तो बस मुझे लगता है कि शायद यही कुछ ऐसा है. अच्छा जी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आज एक खबर आई है कि इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% विच इज द बिगेस्ट क्रैश इन 40 years. और वो कह रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यूज हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 42%, दे कॉन्ट्रैक्टेड इन अप्रैल जुलाई 42%. कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 50%. Trade, hotels, transportation by 47%, manufacturing 39%, but the only sector that showed a silver lining was agriculture and it grew by 3.4%. और उन्होंने कहा है कि जी 19 million salaried people, Majid bhai, lost their jobs. 19 million people lost their jobs. And लेकिन आप देखें कि इन्होंने जो stimulus package जो भी announce किया था मई में, that was $266 billion. का टू कि जैसे कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे अपने शहरों में से अपने गांव के अंदर. तो वो सारी जो माइग्रेशन हो रही थी और जॉब्स नहीं थी तो उसमें जो है मोदी गवर्नमेंट ने जो थी ये अनाउंस की थी 266 बिलियन का. लेकिन फिर भी इस स्टिमुलस पैकेज की के होते हुए भी इकोनॉमी जो है
वो इस चीज पे काबू ना पा ले ना. जिस तरीके से राइज हो रहा है ना ऑन डेली बेसिस, अगर जब ये राइज हो रहा है 60,000 केसेस
सामने आ रहे हैं, 70,000
तो अगर ये 70,000 को जब तक इस पे एक जो कहते ना कि वो लेवल का लेंस को जब तक वो नहीं कर सकते ये फ्लैट इन द कर्व राइट, एंड उसको जब तक फ्लैट नहीं कर लेंगे ये उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये
प्रॉब्लम चलती रहेगी. तो ये है जी, आज ये आज रिपोर्ट आई है. और इसके अलावा जी जो इंडिया के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी उम्र 84 इयर्स थी. अगस्त 10 को उन्होंने अनाउंस किया था कि शायद उनको कोविड 19 हो गया है और उन्होंने कहा था कि जो जो मेरे साथ कांटेक्ट में आया है वो लैदा हो जाए. तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए थे, इनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और फिर ये कोमा में चले गए थे और वेंटिलेटर पे थे. तो आज इनका बेटा जो है उसने अभिजीत उसने आज बताया मुखर्जी ने, उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये बड़े आप लोगों ने बहुत दुआएं की, तो आई एम रियली थैंकफुल टू द होल ऑफ इंडिया कि आप जो हैं आप लोगों ने मेरे बाप के लिए दुआएं की. पर उनकी डेथ हो गई है और बड़ी इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है इंदिरा गांधी के ज़माने से, ये 1969 से ये उनके साथ थे और कांग्रेस के बड़े वो थे और संजय गांधी के बड़े ये वो थे. तो बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस पे ये रहे हैं, कॉमर्स की, डिफेंस की, तो इस तरह. और जो मोदी साहब जो थे उनकी गवर्नमेंट में आते आते फिर इनको जो है फिर वो प्रेसिडेंट बनाया गया. इन्होंने एक किताब लिखी थी जो है ये प्रणब मुखर्जी ने माजिद भाई, द कोलिशन ईयर्स, ये अक्टूबर 2017 में आई थी. अगर आपने पढ़ी है, मैंने इसके कुछ हिस्से पढ़े हैं, मैं पूरी नहीं पढ़ सकी इसकी किताब, बस थोड़ा सा मैंने जो पढ़ा है. लेकिन उसके अंदर जो मैंने पढ़ा है बड़ी आई ओपनर है वो किताब, अगर आप इनकी पढ़ें जो इन्होंने लिखी थी द कोलिशन ईयर्स. उसके अंदर ये सारी इन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई कि कैसे कैसे जो है मैं क्या क्या कुछ करता, कैसे मनमोहन सिंह जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे थे उस वक्त क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी के जमाने का, संजय जो उनके बेटे थे इंदिरा गांधी के उसकी बड़ी वो तारीफ उन्होंने की हुई है कि वो जो सारे रिफॉर्म्स और वो चीजें आ रही थी वो सारी संजय के विजन की वजह से वो सारी आ रही थी मुल्क के अंदर. और फिर यह हुआ था कि इनकी आपस में कभी एक बीच में से छोटी सी लड़ाई हो गई थी तो ये कांग्रेस से हट गए थे फिर, और बड़े ये करीब थे इंदिरा गांधी के. लेकिन राजीव गांधी जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कोई इनको कंसिडर नहीं किया. तो इन्होंने क्या किया कि उनसे हट के अपनी एक पार्टी बना ली थी, लेकिन वो पार्टी कब किधर चली गई किसी को कुछ नहीं. तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पूरी अपना लाइफ का जो जर्नी है इसके अंदर वो सारा इन्होंने जो है और अपना पॉलिटिकल करियर और किस किस पोजीशन पे रहे. तो इफ यू रियली वांट टू नो द पर्सन प्रणब मुखर्जी वॉज, तो आप ये उनकी लिखी हुई कुछ खुद की किताब पढ़ें, और बड़े इनको दिया गया था, बड़े अवार्ड्स दिए गए थे, पद्मश्री और एक इनको दिया गया था अवार्ड, पद्मा वायभूषण और एक भरत रत्न जो था वो इनको अवार्ड्स दिए गए थे फॉर हिज सर्विसेज. तो काफ़ी पीएम मोदी भी, बाकी भी जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बड़ा, उन्होंने कहा कि इनकी डेथ से बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि ही वॉज लाइक्ड बाय एवरीबडी. उनका जिस तरह का स्वभाव था, जिस तरह का उनका मिजाज था, तो उसकी वजह से बड़ा. तो ये आज उधर वहाँ पे काफ़ी अफसोस की खबर है. अच्छा जी, पीएम मोदी जी जो हैं उन्होंने, वो आपको पता ही है कि वो अपना महीने का रेडियो का एड्रेस करते हैं, उसका नाम होता है मन की बात. तो वो हर वक्त जो है अपने मन की बात करते हैं इंडियंस से, वो जो है अपने रेडियो पे वो आते हैं और उनसे, उनके साथ कनेक्ट होते हैं. तो उनकी हमेशा ये जो मन की बात है इसको बड़ा सराहा जाता है. तो अब इस दफा जो उन्होंने की है तो उसमें उनको बेशुमार डिसलाइक्स आए हैं. तो ये जो उनकी वीडियो थी ये अपलोड की गई थी, एक तो पीएमओ के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसके चैनल पे यूट्यूब पे, एक उनका जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके चैनल पे अपलोड की गई थी, और एक जो बीजेपी का चैनल है उसके ऊपर अपलोड की गई थी. तो जिस वक्त ये डिसलाइक्स आए तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ये सारा कांग्रेस का किया धरा है, ये तो इंडिया के अंदर तो खाली जो है वो तकरीबन सिर्फ 2% लोग हैं जिन्होंने डिसलाइक किया है, ये बाहर से डिसलाइक्स आ रहे हैं. तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसे, जो यूट्यूब का चैनल पीएमओ के ऊपर जो इन्होंने अपलोड ये मन की बात ये वाली की है उसमें 1.2 लाख डिसलाइक्स आए हैं, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे किया है उसमें 15,000 डिसलाइक्स आए हैं, और जो बीजेपी के चैनल के ऊपर जो ये आया है उसमें 7.4 लाख डिसलाइक्स आए हैं. तो उसकी वजह जो एक्सपर्ट से पूछा गया कि भाई क्यों, उन्होंने कहा जी जब लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, जब इकोनॉमी सही चल नहीं रही है, तो बजाय इसके कि मोदी जी इस तरह की कोई बातें करते वो कुछ और ही कहते रहे. तो यानी कहने का मतलब ये था कि वो उनको पता ही नहीं है कि नेशन
टॉपिक से हट,
हाँ टॉपिक से हटके
ट्रंप साहब
जी जी जी, तो कि नेशन जो है वो किस अजाब से और मुश्किल से गुजर रही है, उनके उन टॉपिक्स के ऊपर अगर वो बात करते. तो ये पहली दफा हुआ है बहुत अरसे में कि उनकी ये जो मन की बात है, वरना उसको बहुत पसंद किया जाता है और लोग बड़ा इंतजार करते थे उनका, तो ये पहली बार हुआ इतने डिसलाइक्स आए. द वायर की एक स्टोरी है जी, दिस इज रिटन बाय मुदस्सिर अहमद इन श्रीनगर, और उसने ये रिपोर्ट किया है द वायर में, और ये स्टोरी जाहिर है कि और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है इंडिया के. तो उन्होंने कहा है कि मुहर्रम का एक प्रोसेशन चल रहा था मजद भाई श्रीनगर में, और उसमें जो है वो बहुत ही काम क्वाइट था, और बिल्कुल वो सिर्फ काले कपड़े पहन के, और वो बस मोनर्स थे और वो चलते जा रहे थे, और उसके अंदर वो कोई स्लोगन्स भी नहीं कर रहे थे. लेकिन फिर भी जो वहाँ पे इंडियन पुलिस है उसने उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की और पैलेट्स मारे, और उस पैलेट्स में काफ़ी सारे बच्चे जो है उनकी आंखें ज़ाया हो गई हैं फिर से एक बार. तो उन्होंने कहा है कि ये पुलिस ने बड़ा तशद्दुद किया और टीयर गैस भी यहाँ पे फेंकी है, उसके शेल्स फेंके हैं. तो तकरीबन जो हैं 40 मोनर्स जो थे वो वहाँ पे जो है उसके अंदर वो जख्मी हो गए हैं. तो उन्होंने एक वहाँ पे सारे जो लोग थे उन्होंने कहा हुआ था कि ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दिस, के लोग बिल्कुल क्वाइटली नारे भी नहीं लगा रहे, बस सिर्फ चल रहे हैं काले कपड़े पहन के अपना यू नो अपना दुख शो करने के लिए. तो उनके ऊपर ऐसे जो है ओके. पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जी बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा है कि कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो मुझे एक हफ्ते के अंदर चाहिए, और मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए है जो है कराची का. इससे पहले अगर आपको पता हो कि जो कराची के अंदर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक फॉरेन कंपनी से बात की थी, और उन्होंने कहा था कि पूरा के स्टडी किया था कराची को, और उन्होंने कहा था कि कराची के तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स $2 बिलियन लगेंगे. तो उसके ऊपर जो है बड़ा शोर मचा था कि ये जो सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिनको के कितने करोड़ों रुपया दिया जाता है, एंड दे हैव बीन गिवन दिस मनी ओवर द इयर्स, तो उन्होंने क्या कुछ किया है. बल्कि अभी जो वसीम अख्तर साहब अभी जो रिटायर होके गए हैं और बड़ी वो बातें कर रहे थे, लोगों ने उन तक को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जब आप ऑफिस में थे तो आपने क्या किया. तो उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है, और ये प्लानिंग कमीशन का हो रहा था, तो उसमें प्लानिंग मिनिस्टर उमर असद, शिपिंग एंड मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्टर जो है अली जैद, सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, ये सारे थे उस आज मीटिंग में. और उन्होंने कहा है कि ये इसके अंदर ये जो प्लान है इट विल टैकल इश्यूज सच एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर शॉर्टेज, क्लीनिंग ऑफ नालाज, सीवरेज एंड ट्रांसपोर्ट.
सीवरेज इज द मेन की, इज द की, वहां पर अगर ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, हालांकि कराची बहुत बड़ा शहर है, मगर कराची में अगर सीवरेज सिस्टम अगर वो सही कर दें तो वो देखें जिस जमाने में उन्होंने वहां पर जो हमारे गटरिंग का सिस्टम है ना, तो वो जो है वो उस जमाने में लगाया था जब उनको कभी दे कुड नेवर हैव इमेजिन कि कराची की आबादी इतनी आबादी हो जाएगी, आबादी इतनी हो जाएगी, इतना कराची जो है इतना फैल जाएगा, मगर अब कराची जितना जिस तादाद से फैला है तो वो जो है वो उसमें तो
वो जो कंपनी माजिद भाई आई थी ना जिसको जिसने कहा था कि हम $2 बिलियन लेंगे, उसने कहा था कि दुनिया सारी में सिटीज जो हैं वो उनका एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अंदर आप आबादियों को बढ़ाते हैं या हॉरिजेंटली या वर्टिकली या कुछ, वो कह रहे हैं कि उन्होंने आके जब स्टडी की थी तो उन्होंने कहा कि कराची के अंदर आपने इतना हैपहैज़र्ड जो है तरीके से आबादी को फैला दिया है विदाउट एनी प्लानिंग के उसको अब दुरुस्त करना बहुत मुश्किल, यानी कि अगर एक देखे ना एक चकोर डब्बा है, उस चकोर डब्बे के अंदर अगर आपने बनाए हुए हैं ना घर तो उसके सारे फॉर एग्जाम्पल नाले ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, उनका सीवरेज ईस्ट से वेस्ट जाएगा, अब अगर कोई ऊपर है नीचे है टेढ़ा है मेढ़ा है ऐसे कोने पे ऐसे तो वो सीवरेज जो है वो उबल के बाहर ही आएगा ना
exactly.
क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है निकल के जाने के लिए,
यू सी.
हाँ इधर से आपने बंद करके घर बना दिया है, इधर से आपने बंद करके घर बना दिया इधर, तो वो सारा उबल के बाहर आएगा.
अच्छा इसके बाद एक और चीज जो है वो एक इंडिविजुअल जो है कराची का शहरी जो है उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी.
बिल्कुल एब्सोल्युटली.
ये जो कचरा जो बाहर फेंक देते ना
नालियों में
हाँ,
सब, और शॉपिंग बैग्स
और ये सारी चीजें जो फेंक देते हैं, और बकरीद के जमाने में आप देखे जो अंतड़ियां जिसको कहते हैं तो वो सब बाहर लाके फेंक देते हैं, एक तो उससे बीमारी फैलती है, दूसरी वो मक्खियां और गंदे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो लोग आते हैं वहां पर, मोहल्ले गंदे होते हैं और फिर उसी को जो है ये ले जाके फेंक देते हैं,
कोई सिविक सेंस नहीं है जी, कोई सिविक सेंस
या ये कि उसको समुद्रों में डाल दिया जाता है, दरियाओं में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल देते
हैं,
तो हर चीज. सो ये जो इंडिविजुअल्स जो है ना कराची के, मैं और आप, तो हम लोगों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी को, हम यहाँ क्यों नहीं फेंकते
जी, जी, जी.
हम यहाँ क्यों नहीं फेंकते,
हमें फाइन मिलेगा ना,
है ना, तो ये जो एक एक जिम्मेदारी भी है कि हम कहते हैं इसको कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ये ना हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हम ये देखते हैं कि ये कचरा जो है हम गाड़ी से भी बैठ के बाहर कचरा नहीं फेंकते अपना, और क्योंकि बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन.
तो यही तो माजिद भाई हमारी हरकतें हैं ना, सिर्फ कराची नहीं, आप यकीन करें मैं जिस वक्त हम लोग जब उधर पाकिस्तान में थे तो क्योंकि मेरे नाना जी की फैमिली पिंडी में रहती थी तो नाना जी बताते हैं किसी जमाने में कि जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको पता है नाला लई एक होता था, उस नाला लई जो था वो फ्रेश वाटर नाला था और उसके अंदर मछलियां तैरती हुई नजर आती थी. माजिद भाई अब अगर आप पिंडी में जाएं और नाला लई को देखें, कीचड़ उसके अंदर और कचरे के डब्बे और कचरे और वो जो है शॉपिंग बैग्स और वो इतना गलीज और वो गंदा हो गया है कि उधर से गुजर के जाना और बदबूदार के वहां से उस इलाके से गुजर के जाना मुश्किल हो गया हुआ. तो उस इलाके के जो पिंडी के लोग हैं, हाँ पिंडी के लोग जो हैं उस एरिया में जो रहते हैं
exactly.
वो चीजें फेंकी,
इंडिविजुअल्स ने हाँ. अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हाँ, नहीं
हाँ,
की
नहीं, नहीं, नहीं,
अब वो ब्लेम अगर किसी और पे करते हैं
हमेशा गवर्नमेंट पे होता है,
मगर कराची का एक जो नुस्ख है ना वो ये है कि वहां पर जब उन्होंने बनाया जैसे आपने कहा ना कि प्लानिंग नहीं थी तो वो जो है वो सीवरेज सिस्टम वहां नहीं बनाया गया. और दूसरा ये मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊं, सीमेंस जो कंपनी है जर्मनी की, तो उन्होंने पूरा कराची का जब कराची बना था आजाद होके जब कराची आया था और कराची जब बना था तो उस वक्त जो है कराची में उन्होंने टेलीफोन सिस्टम लगाया था, तो वो था वो टेलीफोन सिस्टम
कुछ लोगों के लिए,
1 करोड़ लोगों के लिए था,
अब 40 करोड़ है वहां पे.
अब जो है अच्छा अब वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स तो आपको पता है
हाँ जी,
हमने एक जो लाइन थी वो जो एक लाइन जानी थी उसके अंदर
उन्होंने तो
सैकड़ों की लाइनें बना दी. वो तो सीमेंस वाले आज से कोई 20-22 साल पहले वहां आए थे किसी और काम के लिए, तो वो उन्होंने कहा कि हमने जो यहाँ पर इंस्टॉल किया था हमारा टेलीफोन सिस्टम तो वी वॉन्ट टू गो एंड टेक अ लुक एट इट. तो जब उनको दोबारा वहां लेके
उनको
तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले तो ये बताओ कि हाउ डिड यू डू इट.
जी 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 जी,
हाउ डिड यू डू इट, कि ये किस तरीके से आपने, हमने जो 1 करोड़ लोगों के लगाया था आपने यहाँ पर करोड़ों लोगों के लिए लगा दिया, ये तो ये किस तरीके से आपने किया है.
कोई काम नहीं कर सकता मजीद भाई, आपको पता है कि वो आरिफ नकवी साहब जो कि बड़े आजकल बेचारे अंडर स्कैनर आ गए हैं कुछ केसेस के सिलसिले में, लेकिन उनकी जो अबराज कैपिटल थी उनको बुलाया गया था कराची में और उनको कहा गया था कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग्स हैं इन बिजली की लोड शेडिंग्स को खत्म करो, तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल बिजली खत्म कर देंगे, बिजली की चोरी आप रोक दें कराची के अंदर, अगर आप बिजली की चोरी रोक देंगे तो हम सारा निजाम आपका बिजली का ठीक कर देंगे, 24 घंटे आपको बिजली आएगी. लेकिन लोकल गवर्नमेंट उनके साथ काम करने को ही तैयार नहीं थी, वो ये इंश्योर करने को तैयार ही नहीं थी.
आप देखें, करप्ट है ना वो.
हाँ, इसलिए कि वो आप देखें वो इलाकों के अंदर ऐसे कुंडे फेंके हुए हैं, उन कुंडों से जी बिजली खींची हुई है और चोरी कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली बिजली और कोई उसके ऊपर देखने वाला नहीं है. करप्शन,
करप्शन इज द मेन थिंग. चाइनीज ने ऑफर किया था आपको आज से कोई 5 साल पहले कि हम आपको ऐसा सिस्टम दे सकते हैं कि आपका जो है कि पूरा का पूरा कभी लोड शेडिंग होगी नहीं आपकी, मगर हमने उसको भी नहीं माना. क्यों? क्योंकि करप्शन है,
करप्शन है. इसी तरह एक और भी जर्मन कंपनी थी माजिद भाई जो घेरो विंड कॉरिडोर का एरिया है ना, दैट उसमें क्योंकि आप जर्मनी कभी जाएं, अगर आप इंशाल्लाह कभी जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके ह्यूज एरियाज के अंदर विंड मिल्स लगी हुई हैं जर्मनी जैसे मुल्क के अंदर. विंड क्योंकि चीप है, क्लीन एनर्जी है, राइट, विंड से. तो उन्होंने कहा कि आपका जो घेरो विंड कॉरिडोर है उसके अंदर हम ये ऐसे विंड मिल्स हम लगा देते हैं. जर्मन कंपनी थी या कोई और कंपनी थी कुछ ऐसे था, तो उन्होंने कहा हम लगा देते हैं और आप कई 1000 मेगावाट बिजली यहां से पैदा कर सकते हैं. वो इलाका उनको दिया ही नहीं गया, उनको कहा ही नहीं गया कि आप लगाएं. वही करप्शन के पीछे, शायद उनसे पैसे इतने मांगे गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि जी जाओ, हमने जैसे कि कनेडियन कंपनी से पैसे मांगे थे जब ये लोग आए थे, तो इनसे इतने पैसे मांगे, उन्होंने कहा जी हम तो काम करने के. कनेडियंस तो आपको पता है ना वैसे भी बहुत स्ट्रेट है, ये तो वैसे भी कोई हैंकी पैंकी इनको तो समझ भी नहीं आती है और ये तो बस नाकिसीद में काम करने वाले लोग है ना.
एक ही दफा लिबिया से किया था, फंस गए.
तो वो कनेडियन कंपनी से इतने मांग लिए, वो वापस चली गई, वो जो कंपनी थी वो चली गई. वरना ये बिजली के मामले क्या मामले हैं. आप देखें कि ये ठंडा कितना मुल्क है कनाडा, इसके अंदर सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं जी, जहां पे 6-7 महीने बर्फ पड़ती है.
सही,
पाकिस्तान जैसे मुल्क में सोलर पैनल्स नहीं लगाए जा सकते, हर इंडस्ट्री में लगाए जा सकते.
जरूर लगाए जा सकते. इनकी तो चाइनीज को दे दें, आप चाइनीज दिल टेक केयर ऑफ
या कैनेडियंस को दे दें. कैनेडियन कंपनीज जो है दे आर वेरी हाईली रैंक्ड इन द वर्ल्ड.
एग्जैक्टली,
ये जो लगाते हैं सोलर पैनल्स इनको आप दे दें. और माजिद भाई, हम अपने पाकिस्तानियों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. जो इंजीनियरिंग काउंसिल है ना पाकिस्तान की, उसने कहा था इनको नवाज शरीफ साहब के ज़माने में कि हम आपके जितने बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं गवर्नमेंट, हम लगाने को तैयार हैं आपके सोलर पैनल्स. तो कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं गया, उस बात को आगे बढ़ाया ही नहीं गया, कुछ कहा ही नहीं गया. वरना आई मीन व्हाट्स द बिग डील. जो एक अमीर आदमी है जो कि साल का 200 करोड़ कमाता है, वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर अगर 10 या 12 या 20 या 25 लाख की या 50 लाख की भी पूरे का पूरा सोलर पैनल लगा लेता है, उतनी बिजली आपकी रिलीज हो जाएगी ना माजिद भाई दूसरे किसी चीज के लिए. तो बस वही है, इनिशिएटिव लेने की बात है और वो है. अच्छा जनाब, तो ये था जनाब पाकिस्तान से, ये था. और वी आर राइट एट द एंड माजिद भाई, आपको पता ही है ये जो ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था चैडविक बॉज़मन ने, बड़ा ही ये पॉपुलर था लड़का, बड़ा ही पॉपुलर था, जस्ट अबाउट 43 years old. तो इसकी जो है वीकेंड के ऊपर डेथ हुई थी और ये इसको कोलोन कैंसर था, तो बहुत अरसे से ये फाइट कर रहा था. तो वो जो प्रोड्यूसर है जिसने ये बनाई थी ब्लैक पैंथर, उसने आज बड़ा अफसोस का इजहार किया है. और बाकी के भी जो वहाँ पे फिल्म फ्रटर्निटी है कि ये बड़ा मतलब एंथुजियास्टिक था फिल्म्स में काम और अपने काम करने के लिए. कहते हैं ये इतना शदीद बीमार था कि ये जब फिल्में इसकी चल रही होती थी उसके बीच में जाके सर्जरीज कराता था और कीमोथेरेपी के सेशंस लेता था और फिर सेट पे आ जाता था 2 या 3 या 10 दिन के बाद, फिर से काम शुरू कर देता था. इतना एंथुजियास्टिक.
आप ये देख लें कि राइट फ्रॉम द टार्ज़ैन, द कैरेक्टर टार्ज़ैन था ना, टार्ज़ैन वाज अ व्हाइट मैन, फिर सुपरमैन व्हाइट मैन, फिर स्पाइडरमैन व्हाइट मैन, स्पाइडर वुमन व्हाइट मैन, सुपर वुमन व्हाइट वुमन, तो ये सारा व्हाइट्स का था. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है एक कैरेक्टर ऐसा बनाया कि ब्लैक पैंथर का,
बड़ी उसको पॉपुलैरिटी मिली
ब्लैक पैंथर का. तो ये उसका इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उसने ये कहा कि देखो ये इस ब्लैक पैंथर को जो है एटलीस्ट हमारे बच्चे जो हैं वो उसको आइडल बना के
रिलेट कर सकते हैं,
रिलेट कर सकते हैं कि ब्लैक मैन इज अ पावरफुल लाइक दिस.
कि सिर्फ वाइट्स ही पावरफुल नहीं है,
हाँ,
जो पीपल टार्ज़न ऑफ कलर हैं।
टार्ज़न का करेक्टर क्या था? टार्ज़न का करेक्टर ये था कि वो एक जंगल में एक व्हाइट मैन है जो सारे कालों को सबको मारता रहता है, और सारे उसके पास जितने जानवर है उनको सबको अपने हाथों में लिया हुआ है उसने। तो एक कैरेक्टर था ये, एक दिखाया गया था कि व्हाइट मैन इज सच अ पावरफुल मैन। तो वो उसके बाद बाकी के सारे जितने भी कैरेक्टर आए, आपको पता है अब ये पहला ब्लैक कैरेक्टर था कि ब्लैक पैंथर।
मैं और आप किधर जाएंगे? व्हाइट लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो व्हाट अबाउट ब्राउन लाइव्स? ब्राउन लाइव्स डोंट मैटर?
नो मैटर जी, हम लोग
वी डोंट मैटर,
हम लोग को परवाह नहीं है, हमको तो वी डू आवर मैटर्स आवरसेल्फ्स।
ये हमने अपने मैटर्स अलग को छोड़े हुए
हैं। हाँ जी, परवाह ना करें, अल्लाह वाले।
वही मैं वीकेंड पे सोची थी, मैंने कभी व्हाइट लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, व्हाट अबाउट ब्राउन लाइव्स?
द ब्राउन लाइव्स
बिल्कुल ही नहीं मैटर।
अल्लाह मालिक है जी,
अल्लाह मालिक है। ठीक है भाई, ठीक है,
माफी मालिश
मालिश मालिश, ठीक है जी। अच्छा जी, ये एमटीवी के जो अवार्ड्स हुए हैं वीकेंड पे, इसमें लेडी गागा जो है वो, उसको रेन ऑन मी बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और उसको बड़े हाई अवार्ड्स मिले। और इसी तरह हमारे जो वीकेंड है यहाँ पे, कनेडियन हमारे स्कारब्रो का रहने वाला है ना ये लड़का, वीकेंड कहाँ का रहने वाला है? स्कारब्रो का,
इधर ही का है,
इधर ही का है, कनेडियन है। हाँ जी हाँ जी, तो ये जो है इसको भी बड़े वो जबरदस्त इन्होंने भी जीते हैं। तो इसका जो है वो गाना बाइंडिंग लाइट्स, तो उसको जो है बेस्ट वीडियो ऑफ द ईयर का और बेस्ट R&B का इसको मिला है। और ही पे ट्रिब्यूट टू जेकब ब्लेक एंड ब्रियोना टेलर जो है, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर, वही जो हम बात करें जिनकी डेथ्स हो गई थी इनमें, अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर राइट्स में, तो वो उसके ऊपर ज्यादा उसने कॉन्सेंट्रेट किया। और वो तो ये मतलब है हमारे लिए खुशी की खबर है, हमारे कनेडियन को भी बड़े हाई वो ट्रिब्यूट्स मिले हैं। एंड जनाब, द लास्ट न्यूज इज अबाउट हमारा हाय सेकंड टेस्ट जो मैनचेस्टर में था जनाब, तो उसके ऊपर
हाय से पहले मैं एक और हाय कर दूं
ना।
हाय टोरंटो ब्लू जेज आज हार गए।
ओ भाई,
टोरंटो ब्लू जेज, टोरंटो ब्लू जेज 3 एंड बाल्टिमोर ओरियल्स 4 इन द 11th इनिंग, दो एक्स्ट्रा इनिंग खेली गई, मगर हाय
खड़ी करेंगे
जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहती है ना जी, नेक्स्ट देखना,
हाँ नेक्स्ट देखना, फिर हार जाते फिर कहते हैं नेक्स्ट देखना,
हाँ नेक्स्ट देखना, मतलब ये ऐसी बात नहीं है,
ऐसी कोई बात नहीं,
हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा आप क्या है।
हाँ जी, तो ये सेकंड टेस्ट में, सेकंड टी ट्वेंटी में पहला तो वो आपको पता है ना बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था, तो ये सेकंड में, तो ये शोएब अख्तर साहब जो है ये बड़े गुस्से में है, तो ये कह रहे हैं बाबर आजम के बारे में, ही लुक्ड लाइक अ लॉस्ट काउ, और कह रहे हैं कि हम आवर प्लेयर्स रियली लुक्ड स्केर्ड, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्योंकि बड़ी कमांडिंग पोजीशन थी, तो वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने 195 फॉर 4 आउट थे सिर्फ, इतनी इनकी वो थी, तो इन्होंने इतना अच्छा खेला था, तो ये इन्होंने जो है वो क्यों ऐसे जाने दिया, मतलब बैटिंग तो बड़ी अच्छी थी लेकिन बॉलिंग इतनी इन्होंने खराब की कि ये जान गया। अच्छा, इनके जो स्कोर्स थे वो ये था, जो इंग्लैंड है उसने 5 विकेट से जो है विन किया था ये सेकंड जो T20 था, और इसके अंदर हुआ ये था कि ईन मॉर्गन जो है उसने 66 रन बनाए ऑफ 33 बॉल्स, लेकिन इससे पहले जो बाबर आजम है उन्होंने 56 रन बनाए ऑफ 44 बॉल्स, फखर जमान मेड 72 रन, नहीं फखर और बाबर ने मिलकर 72 रन बनाए थे इन 8.2 ओवर्स, और मोहम्मद हफीज जो थे उन्होंने 69 ऑफ 36 बॉल्स बनाए। तो उसने कहा कि इतना जबरदस्त ये स्कोर था T20 के लिए, 195 इज अ ह्यूज स्कोर,
ह्यूज स्कोर,
इट्स अ ह्यूज स्कोर। तो इन्होंने लड़कों ने उसको फिर डिफेंड क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है उसने बिल्कुल सही,
ऑलमोस्ट 10 रन पर
ओवर, तो उन्होंने कहा कि ये मतलब है किस तरह की ये कैप्टेंसी है, तो बड़ा आज उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। तो वही मैं बेचारे की शक्ल देख रही थी, मुझे बड़ा तरस है बाबर आजम पे, लेकिन बात यही है माजिद भाई, क्योंकि लोगों ने अब फिर से बात करनी शुरू कर दी है ना कि भाई आपने एक इतना ब्रिलियंट प्लेयर था ये बैट्समैन बाबर आजम, और अपनी पेस पे खेल रहा था और बड़ा रिलैक्स होकर खेल रहा था क्योंकि सरफराज जो था वो कैप्टन था, आपने किस चीज के पीछे सरफराज को अचानक से हटा दिया,
तो ये प्रेशर है।
हाँ, तो अब उसके ऊपर प्रेशर इतना है कि वो प्रेशर की वजह से कैप्टेंसी नहीं कर पा रहा है।
या कैप्टनसी की वजह से खेल नहीं रहे।
हाँ, और फिर ये भी है कि यंग है तो वो शायद दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो जरा सीनियर हैं तो शायद वो इसकी, अब मोहम्मद हफीज टाइप के भाई उनके सामने तो ये बच्चा ही है ना, वो अब कैसे सुनेंगे इसकी, राइट। तो वो उनको ये भी लगता है शायद जो जो एक्सपर्ट्स हैं कि शायद ये जो है टीम को कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उसमें ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स हैं, तो मतलब इसको कैप्टन नहीं था बनाना चाहिए, ये प्लेयर बैट्समैन रहता और इसकी रैंकिंग जैसे ऊपर जाती तो सरफराज को रहने देना चाहिए था।
सरफराज को गाले खाते रहो।
हाँ
वो बेचारा आदि हो गया था।
हाँ, तो
गाले खा के उसको आदि हो गया था। हाँ, मगर उसको बेचारे को इंग्लिश नहीं आती ना, मुश्किल ये था।
तो माजिद भाई किसको इंग्लिश आती है, मैसी को इंग्लिश आती है, आपने गेम्स तो अपने टैलेंट पे खेलनी होती है ना।
उसका मजाक उड़ाया गया था कितना बेचारे ने वो।
हाँ,
एक तो बात, माइक खुला था जो इंग्लैंड में चैंपियनशिप हो रही थी अभी लास्ट टाइम की बात है, तो वहां पर माइक खुला था, वो जाके बैठा कहने का, आके बैठते ही उसको नहीं पता था कि माइक खुला हुआ है, तो किसी और से कहता यार फिर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी।
आई स्वीट मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों इंग्लिश पे इतना स्ट्रेस करते हैं। आप देखें कितने सारे जो सॉकर प्लेयर्स हैं उनको आती नहीं है इंग्लिश,
दे स्पीक देयर लैंग्वेज,
दे स्पीक देयर लैंग्वेज, तो उन्होंने तो कभी वो नहीं किया। हम इतना जोर क्यों, हम असल में इंडिया को बहुत कॉपी करते हैं ना कि उनके सारे प्लेयर्स अंग्रेजी बोल रहे हैं,
क्योंकि इंडिया की जो इंडिया में पता नहीं कितनी सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं वहां पर, हर कितने किलोमीटर पे लैंग्वेज है एक वहां पर ना, मगर एक कॉमन लैंग्वेज जो उनकी है, जो रक्षे वाला भी और जो दूध वाला भी और हर आदमी जो बात करता है वो इंग्लिश बात करता है।
साउथ में जो लोग हैं ना माजिद भाई, उनको तो खास तौर पे हिंदी आती नहीं है, आप उनसे हिंदी में बात करें कभी
तो वो इंग्लिश बात करते
हैं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो सिर्फ इंग्लिश में वो लोग बोलते हैं। तो जो वहां से साउथ से कोई जमादार भी आता है ना, कोई मतलब झाड़ू मारने वाला भी आता है, वो भी अंग्रेजी बोल रहा
है, हालांकि वो उनकी इंग्लिश जो है वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं वो, क्योंकि वो उनकी इतना स्ट्रांग एक्सेंट होता है उनका, मगर ये
एटलीस्ट
दे कन्वे दे मैसेज,
95% लिटरेसी
है, कन्वे दे मैसेज एंड इट इज देयर, एक कॉमन लैंग्वेज बनाई भी उन्होंने इंग्लिश की, तो एवरीबॉडी स्पीक्स, चाहे वो टैम्बल हो, चाहे कन्नड़ा हो, चाहे वो हिंदी वाला हो, चाहे उर्दू वाला हो, जो कोई भी हो, वो सब के सब जो है एक लैंग्वेज उनकी है विच इज इंग्लिश।
तो ये इनको भी, नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग कि इनको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आनी चाहिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन मतलब नहीं भी आती है।
आखिरकार यहाँ भी देखें आप, जितने रशियंस हॉकी प्लेयर्स आते हैं तो वो, या स्वीडिश आते हैं या वो आते हैं, आप फर्स्ट ईयर देखें उनको एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं आता, एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं आता, मगर कम थर्ड ईयर दे स्पीक सो फ्लुएंट, आपको पता नहीं लगेगा कि ये कहीं बाहर के मुल्क का आदमी है, रंग तो उनका वही है और वो इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कहते हैं क्योंकि वो आके यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश। जो एक लैंग्वेज है वो जो बेसबॉल के प्लेयर्स हैं ना जो यहाँ से साउथ अमेरिका से आते हैं वो जो है वो अभी भी तीन चार चार पांच पांच साल हो जाते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, बट वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं।
लेकिन उसका टैलेंट के साथ कुछ नहीं है ना माजिद भाई, वो तो बस किसी जमाने में ऐसी क्रिकेट टीम होती थी कि लोग छुट्टियां करते थे, मैं और मेरा भाई हम तो खुद छुट्टी करते थे, तो इंडिया पाकिस्तान का खास तौर पर जब मैच होता था हम जाते ही नहीं थे। अब मियां दाद साहब को कितनी अच्छी अंग्रेजी कोई आती थी या और वो कितनी, मगर टैलेंट मियां दाद जैसा तो किसी
में
था, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो आपने सुना वो जो सुनील गावस्कर ने बड़ी जबरदस्त एक किस्सा सुना रहा था कपिल शर्मा शो में, वो उसका मियां दाद का इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट चल रहा है, तो वो जो बॉलर था उसको जरा कंफ्यूज करने के लिए ना, वो जब भी बॉल करे गंदी बॉल करे तो जो है उसको जरा फ्रस्ट्रेट करने के लिए ना मियां दाद टुक करके ऐसे रोक दे, फिर टुक करके रोक दे, जब रोके उसके पास जाए और उसको बोले इतना लूम नंबर क्या लूम नंबर वो थोड़ा सा हकला के बोलते थे ना, तो ये किस्सा गावस्कर ने सुनाया हुआ है, इतना जबरदस्त। गावस्कर कहता है वो हर थोड़ी देर में, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था मियां दाद, बहुत स्ट्रांग, उसको पता है कि मैंने किस गेम में कैसे खेलना है, किधर मैंने छक्का मारना है, किधर मैंने चौका मारना है, किधर मैंने, तो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा था बॉलर को, ऐसे वो मारे टुक फिर करे टुक, तो हर दफा जाके उसको इतना लूमनबल क्या लूमनबल तो उसको जाके बोले तो पीछे ना वो खड़े हुए थे करमानी, वो जो थे वो विकेट कीपर तो उसने ना ये सुनील गावस्कर को बुला के पास गया तो कहने लगा, ऐसे इशारा किया तो सुनील आया, कहते हाँ गया, कहते ये मियां दाद जो है वो मेरे ख्याल में उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर, उन्हें कहा अच्छा अच्छा छोड़ छोड़ ये टेस्ट मैच चल रहा है, क्या हो रहा है, खेलो तुम लोग, क्या हो गया। तो कहते हैं आखिरकार ना वो जो है वो बॉलर जो है बड़ा उसमें गुस्से में आ गया, तो आखिरी जब उसने अपनी बॉल कराई ना तो आके मियां दाद को कहता है ये मेरा रूम नंबर तेरे को काहे को चाहिए मियां दाद, कहते हैं मेरे को उधर चक्का मारने का सोचो स्टेडियम किधर है और होटल किधर है. तो मतलब इतने मेंटली स्ट्रांग थे. तो ये नहीं है कि कोई मजाक चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, इंटरनेशनल टेस्ट मैच चल रहा है. तो उसके बीच में बडीज, वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स.
बडीज के अलावा जो मेंटल टफनेस की बात है ना आपने, दैट इज द वन कि वो ऐसे वो थे कि उनको परवाह नहीं है,
परवाह नहीं है हाँ. कि मैच चल रहा है तो हमको बड़ा ऐसे सीरियस होके वो करना है, स्टिफ होके नहीं. और मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक और भी क्लिप देखा सुनील गावस्कर का, तो वो बड़ी तारीफ कर रहे थे जहीर अब्बास साहब की. तो कहते हैं कि ये जब जहीर आ जाता था तो ये इतनी बैशिंग करता था इंडिया की कि जिसकी कहते हैं हमें, कहते हैं वैसे तो एज अ टीम बड़ा बुरा लग रहा होता था कि हम इतनी ज्यादा मार खा रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम एडमायर भी करते थे कि वाह व्हाट अ बैट्समैन, व्हाट अ बैट्समैन.
मगर आप
एशियन रेडमैन कहते थे माजिद भाई जहीर अब्बास को.
एक एक जमाना था वो उन टीमों में देखने आप कि टॉप टू बॉटम एवरीबॉडी कुड हैव बैटेड.
Exactly, हर कोई
इवन आपका फेवरेट जो सरफराज नवाज है वो भी, उसको भी मैं छक्के मारते हुए देखा है.
हाँ, 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 हाँ. कभी कभी वो भी मारता था. यस यस.
तो वो जो है वो दे वर ऑल, दिस इज ऑल मेंटल टफनेस.
टफनेस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. वो माजिद खान का नहीं था, माजिद खान की तो बेचारे yes. किसी की बात ही नहीं करता. वो जो डेनिस लिली को, वो गेम चूके हो गई हुई थी तो उसके बाद उसने डेनिस लिली को कहा तुम बड़े मतलब है चीता बनता है करना मेरी. आई हैव हर्ड दिस, मुझे नहीं पता ये अगर आप इसको एंडोर्स याद कर सकते हैं. जो उसने डेनिस लिली जैसे प्लेयर को कहा कि तू, तो छह बॉलों पे मैंने सुना है कि माजिद खान ने छह छक्के मारे थे. तो वो डेनिस लिली तो कहते हैं वो उस जमाने का टॉप बॉलर था. आंखें उसकी बाहर आ गई, उसने अपनी कैप ला के माजिद खान के सिर पे रखी. उसने कहा कि भाई भगवान जी मान गया, मान गया हूँ आपको उस्ताद जी, मान गया हूँ आपको. तो माजिद भाई इस तरह की मेंटल टफनेस थी ना. आप देखें इमरान खान को देखें, जब वो कैप्टन होता था मैच का, कैसे वो टीम के को बता रहा होता था इवन फील्ड के अंदर कि तुमने ऐसे खेलना है, ऐसे करना है, ये करो, ऐसे बॉलिंग करो. ऐसे
मगर
करो.
ये आप ये भी तो देखें ना कि सारे जितने टीम के प्लेयर्स थे वो इमरान खान को रिस्पेक्ट करते थे.
बिल्कुल नॉन जो था ना नॉनसेंस टाइप मैन था ना, बिल्कुल प्रोफेशनल टू द पॉइंट. और मतलब है उसके साथ आप ड्रामाबाजी नहीं कर सकते थे ना. हाँ, ऐसा
तो
कोई नहीं था.
यही चीज ना, तो वो एक, क्योंकि वो एक कैप्टन था तो उसने वो सारी चीजें करते कराते के बाद फिर जाके कैप्टन बना और फिर उसने परफॉर्मेंस करके शो किया अपने आप को कि हे आई नो व्हाट आई एम सेइंग सो लिसन टू मी. तो अब ये जो है दूसरे लोग जो है अब आते हैं वो आके थोड़े दिनों के बाद कैप्टन बन जाते हैं क्योंकि वो किसी जनरल के कोई दोस्त यार है कुछ है तो वो मामला बनता नहीं.
क्रिकेटर्स की क्रॉप ही खत्म हो गई है माजिद भाई. एक एक जैसा वो लड़का था ना, मियादाद, जहीर अब्बास, माजिद खान, वो जो है क्या नाम है, एजाज, सलीम मलिक, वकार, वसीम, वो खत्म ही हो गया वैसा टैलेंट. मुझे नहीं लगता कि अब है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग बट वैसा
टैलेंट है मगर उनको यूज प्रॉपरली
नहीं किया जा रहा शायद. या बाबर आजम तो खैर बड़ा ही अमेजिंग टैलेंट है.
यू नो टैलेंट है, टैलेंट ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है वहां पर और भी बहुत सारे टैलेंट है. अब ये जो दूसरा अफरीदी आया हुआ है, नॉट द ओरिजिनल शाहिद अफरीदी, जो भी जो बॉलर है अफरीदी,
शाहिद खान अफरीदी, शाहिद शाह अफरीदी,
दूसरे कमरे से आवाज आ रही
है. नहीं, शाहिद शाह अफरीदी है उसका नाम.
तो ये जो है,
हाँ हाँ शाहिद शाह अफरीदी है.
तो ये जो है शाहीन,
शाहीन शाह, अच्छा
शाहीन शाह,
ओके शाहीन शाह
अफरीदी जो है, इसका तो किसी ने सुना भी नहीं था. ऑल ऑफ अ सडन ही रोज अप फ्रॉम नोवेयर.
या लेकिन उसको ग्रूमिंग की काफी जरूरत है.
ऑफ कोर्स,
हाँ मैं देख रही थी उसकी वो जो है ना गेम्स पीछे, जो है पीछे की कुछ गेम्स के मैं क्लिप्स देख रही थी. कुछ तो ही नीड्स सम,
इनकी तरह के बेइंतहा और फास्ट बॉलर्स वहां पर मौजूद हैं.
जी 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 जी.
मगर ये है ना कि उनको फाइन करके उनको चांस दिया जाए.
वही है ना माजिद भाई, वही जो जो
ग्रूमिंग की जाए,
की जाए. वो वही जो बात ये जो इमरान खान ने की थी कि आपको हर जगह जाके नेशनल कैंप्स लगाने पड़ेंगे, उन कैंप्स में से बेस्ट टैलेंट उठाना पड़ेगा.
एग्जैक्टली.
तो वो अगर जब तक कैंप्स नहीं लगेंगे तो फिर टैलेंट कैसे सामने आएगा ना माजिद.
पहले जो थे हमारी ट्रॉफीज हुआ करती थी, कायद आजम ट्रॉफी एंड इंटरनल ट्रॉफी एंड पंजाब ट्रॉफी एंड कराची ट्रॉफी एंड, तो उसके अंदर सब अपना चांस था लोगों को अपना टैलेंट शो करने का विदाउट पेइंग और विदाउट गेटिंग पेड. यू नो ये आए तो ये जो थे, ये जहीर अब्बास मुझे अच्छी तरह याद है. जहीर अब्बास को जब लिया गया तो इनको इंग्लैंड टूर से में इनको रखा नहीं गया.
अच्छा
है ना. ये इसको हालांकि कायद आजम ट्रॉफी में इसने एक सेंचुरी, दो सेंचुरी, तीन सेंचुरियां, सिर्फ सेंचुरियां सेंचुरी मारे जा रहे थे ये ज़हीर अब्बास। मगर जब इंग्लैंड टूर पे जाने का वक्त आया तो इनको ड्रॉप कर दिया। तो वहां पर जो राइटर्स थे और जो टीवी तो जमाने में नहीं था, तो रेडियो पे और राइटर्स और अखबारों में इधर उधर बड़ा शोर मचाया गया कि भाई ये इनको एक दफा चांस दें आप, क्योंकि ही इज़ अ
रेयर टैलेंट है,
वेरी रेयर टैलेंट। तो इनको दोबारा बाद में इनको इनवाइट किया गया जब टीम चली गई थी वहां पर।
अच्छा,
इंग्लैंड चली गई थी उसके बाद फिर इनको वहां इनवाइट किया गया। एंड ही वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के बाद पहले ही मैच में, फर्स्ट मैच में डबल सेंचुरी की अगेंस्ट इंग्लैंड।
अमेजिंग, अमेजिंग। तो वही गवास्कर कहता है ना, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच ज़हीर अब्बास।
तो ये जो है, ये क्योंकि वो बैच पहली दफा हमने देखा था उस जमाने में, कोई और नहीं करता था, एवरीबॉडी यूज्ड टू स्टैंड, कि वहां से बॉलर ने अपनी स्टार्ट शुरू किया और इसका बल्ला ऊपर आता, ही वाज रेडी टू हिट।
या
एंड मगर इंडिया जाके वो खेल नहीं सके सही से। वो उस पर 50-50 में भी था ना, एक वहाँ सिगरेट पीते बैठे हुए ज़हीर अब्बास, सिगरेट पीते कोई और कैरेक्टर था वो, कि वो सिगरेट पी रहे कह रहे यार मेरा सिगरेट पकड़, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी गया, अभी आया।
लेकिन बाहर तो जो ऑस्ट्रेलिया में खेला है, इंग्लैंड में खेला है, क्या जबरदस्त माजिद भाई। वो तो आपको पता है, यहाँ पे हमारे पंजाब में तो उसको ज़हीर अब्बास कहना ही लोगों ने छोड़ दिया था। एक फिल्म आई थी बड़ी मशहूर, जीरा ब्लेड, उसको भी जीरा ब्लेड बोलते थे, के ब्लेड साडा आ गया हुण देखो तुहाडी कैसी हुंदी है ब्रशिंग, ठुकाई कैसी हुंदी तुहाडी। हां, जीरा ब्लेड कहते थे इसको
वाकई में। और उस जमाने में जैसे हमने कहा ना कि टॉप टू बॉटम जो है वो पूरा का पूरा टैलेंट था, एंड कॉन्फिडेंस उनमें भरा हुआ
था माजिद भाई। उनको पता था व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग।
वो उस जमाने में अनफॉर्चूनेटली आसिफ इकबाल,
हां आसिफ इकबाल माजिद ना,
उस जमाने में ये T20 वगैरह नहीं हुआ करता था। कुछ इमेजिन उस जमाने में T20 हो
तो इनके कहां पहुंचे होते सर,
कहां से कहां होती वन डे।
वो जो हमारा था, वो जो विकेट कीपर था बड़ा,
वसीम बारी
माजिद भाई, वो उस जैसा तो हमने देखा ही नहीं कोई, उसके बाद जो है विकेट कीपर नहीं हमने देखा वसीम बारी।
तो ये वसीम बारी मुझे अच्छी तरह याद है, थर्ड स्लिप पे जाके कैच पकड़ते थे, जंप मार, थर्ड स्लिप, सेकंड स्लिप को तो छोड़ दे, थर्ड स्लिप पे यूज्ड टू गो एंड ग्रैब द बॉल फ्रॉम देयर। तो ये सारी चीजें थी उस जमाने में। अगर ये लोग वनडे तो आ गया था जनाब आसिफ इकबाल साहब की रहमत से, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके इन्होंने वनडे क्रिकेट शुरू की थी। मगर अगर
T20 होते तो फिर तो आप सोचिए ज़हीर अब्बास का क्या होता,
क्या
उसके
ये लोग तो सारे रिकॉर्ड,
ज़हीर अब्बास और मियांदाद,
सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के पास होते,
पाकिस्तान होते, या
सारे रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के पास होते, आज तक कोई तोड़ नहीं सकता था उसको, क्योंकि वो देवर द क्लास ऑफ क्रिकेट।
ओह यस, ऐसी क्रॉप आई नहीं, वही तो मैं कहती हूँ ना माजिद भाई, फिर नहीं आई वो क्रॉप
इंशाल्लाह। उम्मीद तो दुनिया कायम है। बाबा शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। साहब हमको स्पॉन्सर्स के पैगाम देते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। 416-620-1778 हमारा फोन नंबर।
आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी $0 ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए cibc.com/transfer पर जाएं।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लैण ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
काल टायर। सर्दियों के लिए गाड़ियों के टायर तब्दील करने हो या नए टायर खरीदने हो तो कार टायर पर जाकर रजिस्टर करें और रेडियो 770 AM का हवाला देने पर 4 नए टायरों की इंस्टॉलेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पेशकश 15 अक्टूबर तक महदूद है। KALTIRE.com
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ।
ਹਾਂ, ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ। ਕਾਲ 905-874-7171।
ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋ ਬਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਨੇ ਮੇ ਹਰ ਏਕ ਕਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਯਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੋਂ, ਸਿਹਤ ਕੇ ਅਹਿਦੇਦਾਰੋਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਔਰ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਮਨਸੂਬਾ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਮਿਲਕਰ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਮੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੂਰੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ, ਨਿਗਰਾਂ ਔਰ ਨਰਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਔਰ ਹਾਥ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਔਰ ਤਲਬਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਅਮਲੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੀਗਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕੀਜੀਏ ontario.ca/reopeningschools। ਹਕੂਮਤ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ।
ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੋ ਖੇਚੇ ਮਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਲੰਬੇ ਹਾਥ। ਹੈਰੀ ਸੌਨ ਦ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਮੌਰਗੇਜਸ ਕੇ ਸਾਥ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਸ ਔਰ ਲੈਂਡਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਡੀਪ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਇਨਕੇ। ਆਪਕੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੜੇਂਗੇ। ਹੈਰੀ ਸੌਨ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਤਿਕੜਮ ਲੜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। $228 ਸੇ $1,000 ਮਹੀਨਾ ਕੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਕਾਲ ਹੈਰੀ ਸੌਨ Now, 647-228-1000, Harry Sond of Majestic Mortgages.
Valia Traffic Legal Services se Janab RS Valia.
Careless driving.
Speeding ya phir accident.
Failed to remain, stop at the scene.
Red lights ya phir seat belts.
Permit, drive without insurance.
Racing, student driving ya phir caught while using phone.
Speeding.
RS Valia, aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 905-454-2112, 454-2112.
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
آپ سی آئی بی سی گلوبل منی ٹرانسفر کے ساتھ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر سے ودیش پیسے بھیج سکتے ہیں وہ بھی $0 ٹرانسفر فی پر آپ پیسے آن لائن یا سی آئی بی سی کے موبائل ایپ سے بھیج سکتے ہیں آج ہی اپنا پہلا ٹرانسفر کریں اور پائیں $50 ادھک جانکاری کے لیے cibc.com/transfer پر جائیں
سونا یعنی گولڈ خریدنا یا بیچنا ہے تو ایک قابل اعتماد نام روبی جولرز یاد رکھیے گا اسلم یا اکرام بھائی سے ملاقات کیجیے گا ہاتھ کے بنے ہوئے یا مشینی زیورات اتنی ویرائٹی ہے چوڑیوں اور کروں میں چینز میں آپ سونے کی خریداری کے لیے ایک با اعتماد نام روبی جولرز وزٹ ضرور کیجیے گا پروگرام کا ریفرنس دیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور سونے کی ریپیئر کوئی چارج نہیں روبی جولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ مالٹن میں روبی جولرز
جی سامعین ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ سب اسکول آف اسلامک لیگسی کینیڈا کی بات کرتا چلوں میں ایس آئی ایل سی آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں www.sielc.com پہ وہاں بھی اس کو آپ کی ساری انفارمیشن مل سکتی ہے مگر یہ کہ یہ ویکینڈ اسکول ہے ویکینڈ اسلامک اسکول اور یہاں پر 4 سے لے کے 19+ بچوں کا جو ہے وہاں پر اچھا خاصا آپ کو اسلامک نالج دی جاتی ہے اور بہت سارے پروگرامز ان کے پاس ہیں آج کل تو یہ آن لائن پروگرام کر رہے ہیں اینڈ ایوری باڈی میں اور آپ بھی جو ہے اس پہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو آپ آن لائن جائیے ان کے ایس آئی ایل سی www.sielc.ca پہ جائیے اینڈ اسلامی تعلیمات حاصل کریں صاحب $8 a month ہے آن لائن ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। 7 ईयर्स जो है यहाँ पर तारे गौरी साहब होते हैं, तारे गौरी साहब यहाँ के प्रिंसिपल हैं और बड़े अच्छे असातिज़ा यहाँ पर हैं। तो आप खुद भी सीखिए। अपने बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के इन चीज़ों को वहाँ पर प्रोग्राम लगाएं घर पे अपने और टीवी पर, और उसके साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के जैसे एज ए क्लास खुद भी सीखिए। और ये दीन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप कोई नो बडी इज़ परफेक्ट, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लिसन टू दीज गाइज एंड लर्न समथिंग एट द सेम टाइम मैं अपने बच्चों को और घर के बच्चों को जो है वो सिखा रहा हूँ। तो स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कैनेडा SILC.ca पे जाइए और जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है आपको। फ़ोन नंबर भी नोट कर लें इनका, फ़ोन नंबर है साहब 416-953-3984 जनाब तारे गौरी साहब का फ़ोन नंबर है। कैलेडिन सब्जी फार्म की बात करना चलूँ, कैलेडिन सब्जी फार्म साहब यहाँ पर हरी मिर्च से लेके लौकी, करेला, बैगन, मूली, मेथी और इसके बाद धनिया, साग, मटर, गाजर, यू नेम इट एंड दे हैव इट। ताज़ा तरीन सब्जियाँ जो हैं इन्हीं के फार्म से ये पिक करते हैं और वहीं पर इनका जो स्टोर है बनाया हुआ है इन्होंने राइट इन द कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड इन ब्रैम्पटन। ये जो है 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, कैलेडन मींस के एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड के कॉर्नर पर आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मिलेगा आपको, उस कॉर्नर पे जो है आप पहुंचिए वहाँ पर। और अब हो सकता है ऐसे कुछ आपको वहाँ पर फ्रूट ट्रीज नज़र आ जाए जो आप ला के घर पे लगा सकते हैं, मगर इस साल नहीं तो अगले साल सही। सब्जियां अभी भी ताज़ा तरीन सब्जियां मौजूद हैं। 9056533633 कैलेडिन सब्जी फार्म का फ़ोन नंबर है, 9056533633 इनका फ़ोन नंबर है। चलिए साहब एक और गीत की तरफ ले चलूँ आपको मैं, और ये गीत है आयमा बेग एंड साहिर अली बग्गा की आवाज में, समाप्त फरमाइए।
Baby मेरी जिंद भी तू मेरी जान भी तू तेरी जान दी सौ जिंद जान भी तू
मेरा दिल भी तू दिलदार भी तू दिल दे अंदर दे बार भी तू
रंग भी तू
मेरी जिंद भी तू मेरी जान भी तू तेरी जान ते सौ जिंद जान भी तू
मेरा दिल भी तू दिलदार भी तू दिल ते अंदर ते बार भी तू
आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स ब्रेड डेयरी एंड एग बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी ब्रांडेड फूड्स पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड स्वीट्स एंड समोसास ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 9057931338 होम डिलीवरी इज आल्सो अवेलेबल एशियन फूड सेंटर 9057931338 एशियन फूड सेंटर
आप CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं वो भी जीरो डॉलर ट्रांसफर फी पर आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाए $50 अधिक जानकारी के लिए CIBC.com/transfer पर जाएं
अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ नासर शाह अगर आपको सेकंड मॉर्गेज चाहिए बेशक आपका क्रेडिट खराब हो गया है बैंकरप्सी हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है विद इन 24 आवर्स में 1 मिलियन मिल सकता है विद इन 24 आवर्स में अगर आपको 1 मिलियन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल करें हमें ना तो आपका क्रेडिट चेक करना है और ना ही हमें आपका कोई जॉब की इंक्वायरी चाहिए बगैर कुछ चेक किए सिर्फ और सिर्फ शर्त एक आपके घर में इकट्ठी होनी चाहिए तो आपको बड़ी आसानी के साथ सेकंड मॉर्गेज मिल सकती है कॉल करें 6477419000
जी सामने वेलकम बैक अगेन एंड सब क्विकली मैंने आपको एक गीत की तरफ ले चलना है ये फरमाइश है हमारे जीशान साहब की फरमाइश पर और मोहब्बत की क़यामत क्या गीत है अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने ये गीत गाया है इसको आप तक पहुंचाने के लिए साहब कश्मीर कढ़ाई ने हमें ताउन दिया है कश्मीर कढ़ाई 225 कैसल ओक्स क्रॉसिंग इन ब्रैम्पटन यहाँ पर आपको इस नाम से जाहिर है स्पेशल कढ़ाइयाँ मिलती हैं आपको कढ़ाई इसके साथ साथ बारबेक्यू डिशेज़ हैं यहाँ पर वेजिटेबल डिशेज़ हैं बिरयानी तो है ही इसके अलावा करी डिशेज़ यहाँ पर मौजूद हैं थाली में वेजी थाली एंड इसके साथ साथ नॉन वेज थाली दोनों किस्म की थालियाँ मिलती हैं आपको। तो आपने जाना कहाँ है, कश्मीर कढ़ाई पॉइंट पे पहुँचिए साहब, 225 कैसल ओक्स क्रॉसिंग इन ब्रैम्पटन, 9057585099, 9057585099 इनका फ़ोन नंबर है। ईसा खेलवी, जनाब अताउल्ला खान ईसा खेलवी की आवाज़ मोहब्बत की क़यामत समा फरमाइए।
बात करने की शबे वसल इजाजत दे दो, मुझको दम भर के लिए गैर की किस्मत दे दो। दिल मेरा मुफ्त लिया चोर बनाया उल्टा, खुद झगड़ते हैं के वापस हमें कीमत दे दो। मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे। जो है बेवफा, जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे। दे सके जो ना एक झोंपड़े को, ज़िया दे सके जो ना एक झोंपड़े को, ज़िया दे सके जो ना एक झोंपड़े को। जला के हमेशा, जला के हमेशा दिया क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। जो है बेवफा, जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। कर सके खैर खाही खुद अपने, न जो कर सके खैर खाही खुद अपने, न जो कर सके खैर खाही खुद अपनी, किसी दूसरे का, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। जो है बेवफा, जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। फूलों की उल्फत में धोखे, आए हैं फूलों की उल्फत मोहब्बत में रोके, खाए है फूलों की गुलाब।